glory and thy kingdom, that we shall be glad to be. All glory is come unto thee. All glory is come unto thee. All glory is come unto thee.
Yeah. पांचाकल्पतरुणश्च कृपा सिन्धुलये
प्रवास कर रहा था हम लोग ने, माता सिंह का प्रसंग देखते हैं महाराज वेल के प्रसंग में। जो महाराज वेल और चौथे स्तंभ के अंदर एक कथा आती है, जो महाराज वेल होते हैं जो राजा कर रहे होते हैं तो दिवस वेरी क्रूअल, बहुत ही क्रूअल होते हैं। बताया गया कि बचपन में उन्हें सहभागियों साथ खेलते थे तो खेलते खेलते ही उन्हें सहभागियों गला काट देते हैं। तो जब वो राजा बने तो उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी आई तो उनका जो क्रुएलिटी थी और ज्यादा बढ़ गई। तो इसके बाद ब्राह्मणों ने सोच विचार किया कि इससे कैसे डील किया जाए। काफी सुझाव उन्होंने उनको दिए तो उन्होंने माना नहीं, तो उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से राजा वेल का वध किया। पर वध होने के बाद स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि वेल के राज्य में एक अच्छी बात थी कि जो चोरी और शिकारी थी जो तीर वगैरह थे तो वो इतने एक्टिव नहीं थे। सबसे बड़ी थी वो खुदी थी जो एक्टिवेट नहीं होने थे। और उनके जाने के बाद तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। चाहे भावतन के अंदर कि इतने ज्यादा चोर और डकैत हो गए थे कि जब वो चलते थे झुंड के अंदर तो उनके घोड़ों के पांव में धूल उठती थी, वो बादल का उत्थान कर रहे थे राज्य के अंदर। इतने ज्यादा चोर की ज्यादा भगवान की कृष्ण बलराम की जगन्नाथ उदय संभालने की तो इसीलिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने राजा वेल का वध किया और उसके बाद फिर उनके शरीर को मथना शुरू किया। जैसे उन्होंने उनके साइज को विधानों को उन्होंने मथा तो वहां से जितने भी उनके सिंपल रिएक्शन थे उसका एक मूर्तिमान रूप प्रकट हुआ जिसका नाम दबाव। तो उन्होंने निषाद नाम की रेस को शुरू किया और जंगलों में जाना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने उनके आर्म्स को बाजों को मथा तो जिससे महाराजा पितु और बच्चे की उत्पत्ति होती है। उसके बाद शासन करना शुरू कर, क्योंकि बताया जाता है कि हालांकि जो ब्राह्मण है वैष्णव है और डायरेक्ट रूप से शासन के अंदर इतना पार्टिसिपेट नहीं करते और इसको अपना जिम्मेवारी समझते हैं कि लोगों का भला हो सके, इसलिए कभी कभी आगे एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आज के प्रसंग में देखते हैं, किंग जेन के प्रसंग में देखते हैं। बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण इस तरह से प्रजा के हित को निग्लेक्ट करता है तो अपनी वो स्पिरिचुअल शक्ति से खो बैठता है। जैसे कि खड़ा है, खड़े में अगर छेद हो जाए तो उसे पानी बाहर लगता है, धीरे धीरे घड़ा खाली हो जाता है। इसी तरह से जो ब्राह्मण है या उस कोटि के संत हैं अगर वो भी अपने आप ही रहते हैं तो जन सरदारी में ध्यान नहीं देते तो उनकी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है वो भी इस तरह से रिड्यूस होती रहती है। तो इसलिए ब्राह्मण अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि कैसे हम प्रजा को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो आज के प्रसंग में तनुता तीन शब्द आते हैं, एक है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिसमें बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र और डिक्टेटरशिप आना चाहिए। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि शिला गोपाल जी का इनके रिगार्डिंग क्या विचारधारा है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि वो सरकार वो गवर्नमेंट जिसको लोग खुद चुनते हैं, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर उसके नाम से शासन किया जाता है। और मोनार्की में क्या होता है, ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, ये एक राजा है जिसके अंदर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है तो वो पूरे देश का निरीक्षण करते चलाते हैं। और फिर तानाशाही क्या है, जिसको डिक्टेटरशिप शर्मा ने बताए हैं लेकिन मोनार्की गवर्नमेंट एंड लीडर कि वो राजतंत्री है और जो वो राजा है ही इज नॉट वेल ट्रेन्ड। तो इसीलिए वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है जनता की शासन। तो शिला गोपाल इसके बारे में बहुत सा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे। तो शिला गोपाल कहते थे डेमोक्रेसी को बोलते हैं डीमन क्रेसी। तो इसका इतना गोपाल इतना शिक्षित क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि कलयुग में बताया गया है सर्व शुद्ध संभव, कलयुग में हर व्यक्ति शूद्र है और शूद्र का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, इंद्रनिधि को प्राप्त। एकमात्र लक्ष्य ही है कैसे अपने इंद्रियों को तृप्त किया जाए। तो इसीलिए इतने शूद्र मिलकर अपने में से एक शूद्र को इलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो उसमें दिक्कत क्या है, तो इसमें बताया जाता है कि जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक अनपढ़ व्यक्ति है,
तो दोनों के मत को एक समान समझा जाता है कि दोनों के मत की सेम वैल्यू है, हालांकि सेम वैल्यू कैसे हो सकती है। बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति है, वो समझदार व्यक्ति है और एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो दोनों का सेम मत कभी भी हम सेम वैल्यू से उसको माफ नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत बड़ा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे सपोज करो हमें फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जाना है, तो काफी पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो अनाउंसमेंट होती है यार आया बीमार हो गए, वो विमान वाले नहीं हैं, तो आप ऐसा कीजिए सभी मिलकर विचार कीजिए और अपने में से तीन व्यक्ति ढूंढी है जिनको वोट दी जाएगी, जो सबसे ज्यादा वोट जिसके पास होंगी तो उसको पायलट बनाया जाए, तो वो क्लेम हो जाएगा। तो कौन करेगा उसको? इट इज काइंड ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। लघुपा कहते थे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल बोलते थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी की भर्सना करना चाहते थे, किसी को इंसल्ट करना चाहते थे, इसके से कारण था। दूसरा तरह वो बताते हैं कि साधारणतः लोग 99.99% लोग अपना स्वार्थ नहीं था, उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्य कश्यप उपदेश देते हुए बोलते हैं, नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराश्याय परिवर्त मानी में अंधा यथा अंधे उपनीय माना ते भी संत्रया पूर्वगाम नहीं करता। कि सदारत है लोग नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, उन्हें नहीं जानते कि जो उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, भगवान श्री विष्णु के चरण कमल को प्राप्त करना। तो इसलिए क्या करते हैं, दुराश्रय फॉल्स शेल्टर को अपनाते हैं, इंद्रजीति के रास्ते को अपनाते हैं और खुद भी अंधे हैं और अंधे व्यक्ति को फॉलो करते हैं, तो इससे दोनों ही कट्टे में जाते दिखते हैं। अंधा यथा अंधे रूपनीय माना तेरी संतरिया पूर्ण काम नहीं करता। तो इसीलिए प्रकृति के जो तीन नियम है उन तीनों रस्सियों द्वारा वो जकड़े रहते हैं। तो जो व्यक्ति भूति अपने भले के बारे में नहीं जानता तो अपने लीडर को कैसे चूज कर सकता है। दिस इज अ पॉइंट श्लोक ओवर वॉन्ट टू मेक। तो इसीलिए प्रॉपर्टी दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि वर्तमान समय में यह है निरंतर बना हुआ है क्योंकि जनता की सरकार है। पहले तो जब राजा नहीं होता था, यहाँ पे वर्ड यूज किया अराजक है, राजा के भीन होने से लोगों को डर लगता था, पर अभी जो डर है दैट इज कॉन्स्टेंट, हर टाइम ही ये डर बना हुआ है इस गवर्नमेंट के कारण। क्योंकि जो भी व्यक्ति पावर में आता है तो उनकी चेतना क्या होती है, मेजोरिटी साधारण हम क्या देखते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए, अपनी पोजिशन को सेव करके किया जाए और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करके लोगों से उसको अलग अलग जगह जमा किया जाए। तो इसलिए क्या होता है, लोगों को बहुत कम सहूलतें प्राप्त की जाती है और कितने भी दूर से एडमिशन बनते हैं उनमें शास्त्रों का कोई भी निर्णय नहीं दिया जाता। लोगों का भारतम के चौथे स्तंभ में बताते हैं, इन अ मॉडर्न एज ऑफ डेमोक्रेसी देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग फॉर लेजिस्लेशन। जब भी कोई देश के लिए नियम कानून बनाना होता है उसके लिए बहुत से लोग मिलकर एक वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, जिसके बाद उस निर्णय में पहुंचा जाता है। एवरी डे ड्रिंक ऑफ द न्यू लॉ, हर रोज कोई ना कोई नया लॉ आता है। तो इससे रिजल्ट क्या है, दीज लॉज आर ओनली मेंटल कंस्ट्रक्शन, मनोरथे नास्ती भाव हो गई, जैसा उनका मन कहता है कि जो सही है उसके अनुसार ही वो लॉज बनाए जाते हैं। तो इसमें शास्त्रों को कभी भी अंतर किया नहीं जाता, इसीलिए जो भी शास्त्र मेंशन नहीं है वो आप लोग इतना बताते हैं, यह शास्त्र मेरे मुस्लिम जय वर्तले काम का रहे था नासा सीधे आप लोग इतना सुखना तरंग कि कोई भी कार्य है जो शास्त्रों को कंसल्ट किया किया जाएगा उससे ना तो कोई समृद्धि प्राप्त हो सकती है और ना ही कभी जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता। तो तीन डिफेक्ट हमने देखे ये डेमोक्रेसी में आते हैं, इसीलिए पहले टाइम्स में मोनार्की के सिस्टम को फॉलो किया जाता था। मोनार्की मतलब राजा, इसमें राजा होता था जो कि बचपन से ही गुरुकुल में जाते थे और प्रशिक्षण ग्रहण किया जाता था ताकि वो योग्य राजा बन सके और लोगों की मदद कर सके, भौतिक दृष्टि से भी और जाति दृष्टि से भी उनको प्रगति करवा सके। इससे उनको राजऋषि बोला जाता था, एक आइडियल लीडर होते थे जिनमें बहुत ही गुण प्राप्त किए जाते हैं। तो इसीलिए एक फायदा ये होता है मनोराजी के अंदर कि कोई भी रेगुलेटरी फीस बनाना होता ना दैट वॉज वेरी इजी टू ले एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। राजा बैठते सभा के अंदर बहुत ही जल्दी कुछ नियम बनाया जाता उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। शर्मोपाल आप उदाहरण देते हैं जैसे कश्मीर में जब राजा का रूल था मनोराजी थे तो उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति चोरी करता था करता हुआ पकड़ा जाता था उसको राजा के समझ ले जाया जाता था तुरंत ही उसके हाथ काट दिए जाते। ऐसा नहीं तो 10-11 साल पहले केस चलेगा पब्लिक के वो जेल में बैठ के पब्लिक के दर्शन को लीजिएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद उसका निर्णय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता तुरंत ही उसको राजा के समझ ले जाया जाता था और राजा के सामने ही उसके दोनों हाथ काट दिए जाते। इतना मुश्किल दंड दिया जाता था इस तरह से नियरली नेग्लिजिबल चोरी काली उनके राज्य में होती है। कोई अगर सड़क पे चीज पड़ी भी होती है तो वो फिर भी व्यक्ति डर के उसको हाथ नहीं लगाते कहीं ऐसा ना समझ जाता कि मैंने चोरी की। तो इतना ज्यादा डर उस टाइम पे होता है। वो क्यों होता है क्योंकि राजा उस टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से जनता को रूल करते थे। तो शास्त्र में ऐसे बहुत सी उदाहरणें आती हैं कि भरत महाराज हैं भरत महाराज के सामने बताया जाता है He was totally detached from his position. तो आज हम देखते हैं किसी नेता को किसी तरह से कोई सीट मिल ही जाती है तो हर टाइम वही सोचता रहता है कैसे मैं अपनी सीट को कायम रखूं किसी न किसी के सीट पे कुछ कब्जा न हो और बाहर के लोगों को सीट नहीं मिली होती वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कैसे मैं सीट को प्राप्त करूं। तो पहले ऐसा नहीं होता जो ट्रेन लीडर होता था वो हमेशा अपनी पोजिशन से आना सकता है तो जैसे उनको मौका मिलता था वो अपने राज्य को छोड़ के वाण शासन में जाते थे और वहां को प्राप्त करते थे। और इसी तरह से जो सिटीजन्स हैं उनको भी ये निर्देश प्राप्त होता था कि हमारा राजा भी अगर धार्मिक प्रवृत्ति का है तो हमें भी उसी प्रवृत्ति का पालन करना है। तो वो कहते हैं जदत राजति श्रेष्ठा तदत देश जन्म सारे प्रमाणन रूप से लोगों से अनुवर्तित तो धारा जनता उसी आचरण को फॉलो करती है उसी आचरण का पालन करती है जो भी उनका राजा है उसको पालन करता है। विष्णु महाराज के प्रसंग में देखते हैं जैसे ही उनको पता लगता है कि भगवान श्री विष्णु ने धाम छोड़ दिया तुरंत अपना मुकुट रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। परीक्षित महाराज को जैसे ही पता लगता है कि उनकी प्रार्थना में मृत्यु होने वाली है तो अपने बेटे को राजा बनाते हैं और जाके 7 दिन के लिए भावश होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो बिटू महाराज का उदाहरण उन्होंने डिस्कस किया कि बिटू महाराज वेद से उत्पन्न हुए और उस टाइम पे जो अर्थ थी धरती थी उन्होंने पूरे अपनी फैसिलिटीज को रोक लिया तो मेरे किंग वेद बहुत ही गलत तरीके से शासन कर रहे थे। जब बिटू महाराज इस चीज को देखते हैं तो वही एकदम से क्रोधित होते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने सिटीजन के लिए ऑडियोस को मुहैया करवाते हैं अर्थ को जानते हैं द्वारा उपयोग देना शुरू करती है। तो बताया जाता है कि गुड लीडर फैसिलिटेट्स गुड फैसिलिटीज फॉर द सिटी। जो अच्छा राजा है अच्छा लीडर है वो अपने सिटीजन के लिए अच्छी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत अच्छा पास टाइम आता है ये कुछ ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है। उस समय पहले चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासन कर रहे थे तो उनके मिनिस्टर थे चाणक्य पंडित हम सब उनको जानते हैं काफी उनको सपोर्ट करते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। तो उस टाइम पे चाइनीज एक मिनिस्टर थे युंग सैन नाम के तो उन्होंने सोचा कि भारत इतना प्रगतिशील क्यों है इसमें जाके देखा जाए कि क्या कारण है कि भारत में लोग इतने ज्यादा खुश हैं इतनी ज्यादा प्रगति है। तो इंडिया में आते हैं देखने के लिए उनको पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो प्रशिक्षण देते हैं चाणक्य पंडित से और चाणक्य पंडित के पास जाते हैं वहां पे रेड करते हैं चाणक्य पंडित कुछ राजसी कार्य कर रहे होते हैं कुछ गवर्नमेंट का कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो उन्होंने एक लैंप चलाया होता है उसमें रोशनी बैठ के कार्य कर रहे होते हैं वेट कर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम बाद उनका कार्य खत्म हो जाता है तो अपने लैंप को बंद करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं फिर दूसरा लैंप चलाते हैं फिर अपना उनसे मीटिंग करना शुरू करते हैं। तो यूसने कहते पहले आप मुझे ये बताइए कि लैंप तो दोनों सेम है रोशनी दोनों में सेम आएगी तो आपने उस लैंप को बंद करके इस लैंप को क्यों चलाया क्या कारण। तो वो कहते हैं कि जो पहले वाला लैंप है ये मुझे गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है गवर्नमेंट का कार्य करने के लिए तो इसको मैं केवल गवर्नमेंट का कार्य करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा गवर्नमेंट का कार्य खत्म हो चुका है तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया और जो मेरा बचना जो लैंप है जिसको मैंने अपनी अपनी हार्ड एंड मनी से अर्न किया है, तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल कार है, पर्सनल मीटिंग है, तो इसलिए मैंने इस लैंप को यूज किया। तब यूंग सैन इसको सुनते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि वास्तव में क्या कार है। राजा है कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति से संरक्षण प्राप्त करता है, इसके कारण ही प्रजा है बहुत खुशहाल। तो इससे हम भी एक शिक्षा ले सकते हैं, ऐसे हम भी सोसाइटी के अंदर हमें भी अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं, अलग अलग प्रकार के रोल दिए जाते हैं सेवा करने के लिए। तो हम भी इसमें सतर्क रह सकते हैं कि जो फैसिलिटीज जो अब हमें सेवा के लिए दिए गए हैं, हम उनको भगवान की सेवा के लिए यूज करें, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए ना यूज करें। दैट मीन मेक द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी पीसफुल। और शास्त्र में देखा गया है कि स्वयं भगवान भी अलग अलग प्रकार के भक्तों को इस मनार्थी में राजा के विषय में बिठाते हैं, ताकि भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध किया ऋषि महाराज को बिठाने के लिए। सिमिलरली प्रसंग आता है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के आगे नरसिंह प्रकट होते हैं और उनको ऑप्शन देते हैं कि आप उसे बेनिडिक्शन मांगिए, तो प्रहलाद महाराज मना कर देते हैं कि माम मांग पर लोग सत्यम कामेश्वर सही हुए सत्यम विष्णुषित कि मुझे आप ऐसा प्रलोभन मत दीजिए बेनिडिक्शन का, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे बहुत भय लगता है सत्यम भी। तो फिर भी भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप राजनीति पर बैठिए और एक मनमंत्र के लिए अब व्यक्तियों के ऊपर राज कीजिए, तथापि मनमंत्र में जैसे ईश्वर न अनुभूष भोगन, व्यक्तियों के ईश्वर बनिए और एक मनमंत्र के लिए आप उनका शासन स्वीकार करें। कि भगवान की भी इच्छा रहती है कि एक योग्य व्यक्ति हो जो कि सर्वगुण संपन्न हो, वो आके जनता के ऊपर शासन करे। और साधारण का देखा जाता है कि जो मनार्थी को इतना लाइक नहीं करते शासन, तो उसका कारण ये नहीं है कि मनार्थी में कुछ गलती है, राजतंत्र में कुछ कमी है, कुछ गलती है। प्रॉब्लम ये है कि जो मनार्थ है, जो लीडर है, जो भी टॉप के लीडर है, दैट इज नॉट वेल ट्रेन, वो ट्रेन नहीं है। तो अगर लीडर ट्रेन नहीं है तो मनार्थी कन्वर्ट इनटू डिक्टेटरशिप, तो राजतंत्र है वो तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। और जो तानाशाही जब होती है, दैट इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी व्यक्ति को मिलती है जिसका अपने इंटरेस्ट में कोई वश नहीं है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो दैट इज वेरी वेरी फियरफुल कंडीशन। तो वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लोगों का शोषण करता है। इसमें शिला भगवान बताते हैं चौथे स्कंध के चौथे अध्याय के 16 नंबर श्लोक में, फॉर्मली इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर मोनार्कीज, पहले साधारणतः पूरे विश्व में राजतंत्र होता था, बट ग्रेजुअली एज मोनार्की डिक्लाइंड फ्रॉम द आइडियल लाइफ ऑफ रिलीजन टू द गॉडलेस लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मोनार्कीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अबॉलिश्ड। तो धीरे धीरे जैसे मोनार्की रिलीजन धर्म के पद से चूक हो गई, तो जितने भी राजतंत्र थे पूरे विश्व में उनको हटा दिया गया। और अगर सिंपली अबॉलिशिंग मोनार्की एंड रिप्लेसिंग इट विद डेमोक्रेसी इज नॉट सफिशियंट, अनलेस द गवर्नमेंट मैन आर रिलीजियस एंड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट रिलीजियस पर्सनैलिटी। और सिंपली राजतंत्र को हटा देना और लोकतंत्र को हटा देना, तो इससे हमारी समस्या सुधरेगा। जब तक के जो टॉप है, जो व्यक्ति है, वो धर्म का पालन नहीं करते और रीजन को फॉलो नहीं करते, तो इसमें शास्त्रों में बताई गई है बहुत से ऐसे धारणे हैं से वगैरह। पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा सुषमा माम का पांडव चाहिए कि गुरु का संजय। तो इसमें धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में राई लड़ी जा रही है, तो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वो दोनों क्या करें। तो इसी वाक्य में पता लग जाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। तो वो अपने पुत्रों को और पांडु के पुत्रों को दोनों को अलग अलग समझ रहे, हालांकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी पूरी प्रजा को वो अपने पुत्र के समान समझ, पुत्र के समान उनका संरक्षण करे। तो उनकी इच्छा ये थी कि मेरे ही पुत्र विजयी हो, वही राज के ऊपर बैठे, हालांकि उनको पता था कि आइडियली जो हक बनता है वो पांडु का हक बनता है। जिस मान लो पहले एग्जाम्पल एक औरंगजेब का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वो भी जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपने फादर को ही बंदी बना दिया, अपने पिताजी को ही उन्होंने बंदी करके तारा में डाल दिया, इस तरह से कहीं मेरे पिता मुझे राजगति से ना हटा दें। तो अगर एब्सोल्यूट अथॉरिटी की शक्ति को दे दी जाती है तो पर वो व्यक्ति ट्रेन नहीं है, मैरी प्लेस में है, उसकी चीज बहुत ज्यादा ध्यान बन जाती है। तो लीडरशिप जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क है, बताया जाता है कि प्रजा के जितने भी इनपुट एक्शन हैं उसका जो मानसिक रिएक्शन है वो लीडर को लेना पड़ता है। पर हालांकि इसका कोई विश्वास नहीं करना, कोई इस चीज से विश्वास करेगा तो कोई भी लीडर नहीं बनना चाहिए, वो भी आज तक की परिस्थिति। तो कोई इसे विश्वास नहीं करता तो लोग लड़ाई करते हैं लीडर बनने के लिए, फिर उनको इसका रिएक्शन भी फेस करना पड़ता है। पर हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हो सकता है कि मैक्रो लेवल पे हम अभी इस परिस्थिति में नहीं है, हमारी सोसाइटी इस परिस्थिति में नहीं है कि हम इसको मैक्रो लेवल पे अप्लाई कर सकें, पर अपनी सोसाइटी के अंदर ही हमें काफी लीडरशिप पोजीशन लेनी पड़ती है मैनेजमेंट के लिए या प्रचार करने के लिए। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए और जितने भी आइडियल लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो हमें अपने चित्र के अंदर उनको डालना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से हम भगवान की सेवा कर सके, जो हमारे जो आशिक जो भक्त हैं वो भी सीरियस रहे। तो भगवान भगवान बहुत सी ऐसी क्वालिटीज का भागवत में बहुत सी ऐसी क्वालिटीज का वर्णन किया गया है, दीक्षा कारुणी का सुविधा शत्रु शांत साधवा साधु भूषण, ये तो क्वालिटी तो वैष्णव जो भाग करने में अच्छी नहीं है। तो भगवगीता के अंदर भगवान बताते हैं क्षमा तमा कृपा शोषण शांति कार्यों में ज्ञान विज्ञान अस्तित्व ब्रह्म कर्म स्वभाव है। आइडियल क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण और वैष्णव, तो इन क्वालिटीज को अगर हम अपने जीवन में अनुकूल करने का प्रयास करेंगे और फिर हम सेवा करेंगे संतोषशील की भावना से रहित होकर, तो हमारे लिए भी अच्छा हम अपनी प्रगति करेंगे और हमारे आशीर्वाद भक्त हैं वो भी उससे प्रगति कर सकते हैं। और साधारण लोग भक्तों की तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, तो इसीलिए अगर हम अपना अच्छा आचरण रखेंगे तो साधारण जनता भी इससे प्रभावित होगी, वो भी अपने आप के अंदर इन दोनों को कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम प्रचार को बढ़ा सकते हैं, ताकि समाज के हर वर्ग का हम इस प्रचार को लेके जाएं, कृष्ण भगवान को लेके जाएं। तो शिवा बाबा की एम्बिशन थी कि पार्लियामेंट जितने भी लोग बैठे हों उनके ऊपर तिलक लगाना चाहिए, सभी ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए। तो पार्लियामेंट शुरू होने से पहले खत्म होने के बाद भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। वैष्णव की इच्छा तो पूरी तो होगी, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा हम प्रचार कर सके ताकि ये लोग भी कृष्ण महावन कर सके। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इसके बिना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कारण स्वामी महाराज वर्ष के संदर्भ में बताते हैं, थोड़ी थोड़ी महाराज बताते हैं कि ये जो अभी प्रसंग चल रहा है तो इसको हम देखते हैं कि बाहरी दृष्टि से बहुत ही अशुभ लक्षण है, बहुत ही इनऑफिशियस कंडीशन लग रही है। राजा ने स्त्री छोड़ दिया है, वो भी यज्ञ के बीच में, पूरी जनता बहुत क्रंदन कर रही है कि राजा कहां से रहे और जनता में अलग अलग प्रकार के लोग फैल रहे हैं, और फिर भी भारी रूप से देखने से हमें इस कंडीशन बहुत ही भयावह लग रही है, लग रही है। और अल्टीमेटली इट बिकेम ऑस्पिशियस, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनके श्री का मंथन किया तो उससे वैदेह नाम के व्यक्ति प्रकट होते हैं, तो जन्म भी बोला जाता है, मिथि भी बोला जाता है कि उनको मंथन करके उत्पन्न किया गया, तो उनके नाम से मिथिला नाम का राज्य बनता है। मिथिला के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के लीडर्स आते हैं, लोग अच्छी तरह से जनता को रूल करते हैं। और आगे जाके हम देखेंगे कि इसी डायनेस्टी के अंदर जनक महाराज उत्पन्न होते हैं, जो कि सीता माता के फादर बनते हैं, फिर भगवान श्री राम के फादर और बनते हैं। तो भारी दृष्टि से हमें कई बार सिचुएशन लग सकता है कि बहुत ही इनऑफिशियस है। कृष्ण भगवान को हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जो कि भारी रूप से देखने में लगे कि बहुत ही अशुभ है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही होपलेस है। अगर हम ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण वैष्णव का संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो प्रॉपर इसको डील करते हैं, तो फिर यही परिस्थितियां हमारी इनऑफिशियसनेस से ऑस्पिशियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि किंग अंग के प्रसंग में हम देखते हैं कि किंग अंग थे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे थे, और सेक्रीफाइस में डेमिगॉड्स नहीं आते थे श्रेय प्राप्त करने के लिए, तो किंग अंग बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने ब्राह्मणों से कंसल्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, डेमिगॉड क्यों नहीं आए, बिना डेमिगॉड्स के यज्ञ था इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि शायद आपके पुत्र नहीं है, आपने पिछले जन्म में कुछ सिंपल एक्टिविटी की है, तो इसलिए डायमंड गॉड्स आपके उसके लिए पार्टिसिपेट करने नहीं आ रहे, तो आप एक अलग से यज्ञ कीजिए और एक पुत्र को प्राप्त कीजिए। तो तीन गांव यज्ञ करते हैं, पुत्र प्राप्त करते हैं, जो पुत्र पैदा होता है वो होते हैं तीन भाई, जो कि उन्होंने भी डिस्कस किया होगा कैसा स्वीकार। तो शास्त्र में बताया गया जो पुत्र होता है वो मोस्टली ग्रैंड फादर की क्वालिटीज को अपनाता है, अपनी मदर के फादर को। तो तीन गंग की जो वाइफ थी तो वो भी कुछ ऐसे बैकग्राउंड से थी जो कि अच्छा नहीं था, तो इसीलिए किंग वेन के अंदर बताया गया थी। तो किंग अब सोचते हैं मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैंने इतना बड़ा नुकसान किया, तो पुत्र प्राप्त हुआ वो भी वेन जैसा, तो बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि वेन से बहुत ज्यादा क्रोध थे। तो एक दिन अगर आप चिंता कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, अगर जो मेरा बेटा बहुत ही सुशील होता तो मैं बहुत ज्यादा उससे अटक हो सकता। शास्त्र में बताया गया है कि अगर पिता है जिनका बहुत ज्यादा कर्जा है, माता है जिसका किसी और व्यक्ति से रिलेशन है, तो वो अपने बच्चों के लिए नीवे के समान, अगर पिता बहुत पिता का बहुत कर्जा है तो अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान। तो सिमिलरली अगर वो संतान है वो अच्छी नहीं है तो पिता के लिए शत्रु के समान। तो किंग अंग सोचते हैं कि भगवान की कृपा है, मेरा बहुत अच्छा मौका है, मैं इस राजा को छोड़ के जाके भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान को प्राप्त करता हूँ। तो रात को ही उसी समय अपने राजे को छोड़ के चले जाते हैं और जंगल में जाके भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं। और आगे भी हम देखते हैं कैसे किंग वेन से हमारा पिशु और अच्छे की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भगवान के समय अच्छा होता है। तो इस समय सीख सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई भी परिस्थिति कोई भी घटना है भारी दृष्टि से बहुत गलत लग रही है, पर अंततः वो हमारे भले के लिए होती है। बताया जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, डार्कनेस कम्स बिफोर डॉन, दिन होने से पहले अंधेरा होता है। कैसे भगवान श्री कृष्ण है उनका भी वर्त देखने कैसे हुआ तारागार के अंदर हुआ। तो शिला गोपाल अमेरिका गए थे, हम शिला गोपाल के तरीके से जी सकते हैं, इंडिया में रहकर उन्होंने इतना प्रयास किया, जीवन रोटी बनाए सफल नहीं हुआ, उनके किसी गौर बदल ने साथ नहीं दिया, बिहार में बैठ के गए तो दो हार्ट अटैक आए, अमेरिका में गए उनको उनके रूम में चोरी हो जाती है, कोई डायबिटिक खुला देता, फिर बाउली में जाते हैं तो जिसके साथ वो रह रहे होते हैं वो उनको लगता है कि इसको मैं दिशा दूंगा, बहुत अच्छा कप बन गया, तो एक दिन रात को पागल हो जाता हूँ, वो पागल रात को ही छोड़ के भागना पड़ता। देखने में लगता है कि बहुत ही सबूत ही और पीछे चल रहा, उसको हम पीछे सुन नहीं हो रहा वो भाग्य लाइफ में अगर हम भारी दृष्टि से देखें, पर ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में ही इसको उनका उदय होगा। कहते हैं कृष्ण है चैतन्य पर कि न वो मोह इस्कॉन, भगवान श्री कृष्ण ने इस्कॉन के गर्भ में जन्म लिया है। इसी परिस्थिति को कभी भी हमें भारी रूप से नहीं देखना चाहिए, हमें पूरा फेस होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑफ स्पीशीज। इसमें बहुत अच्छी है गोपाल जी लास्ट टाइम आता हूँ, एक बार शिला गोपाल 1967 में जब शिला गोपाल की बहुत खराब हो जाती है तो लॉन्ग ब्रांच एक बीच का एरिया था, वहाँ पे भक्षण के लिए कॉटेज का इंतजाम करते हैं, वहाँ पे शिला गोपाल जाले होते हैं। तो वहाँ पे एक बार जगरानी माता जी होती हैं, शिला गोपाल उनको अपनी फोटोग्राफ देते हैं जो कि उनकी अमेरिका आने से पहले की होती है। तो उस फोटोग्राफ में शिला गोपाल एक दीवार के आगे खड़े होते हैं, दीवार ब्लैक और व्हाइट कलर की होती है, तो उसमें शिला गोपाल बहुत ही ग्रेव दिख रहे होते हैं, बहुत ही गंभीर दिख रहे होते हैं। तो जदुरानी माता जी शिला गोपाल को कहती हैं कि प्रभुपाल यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी है, कि वो सोचते हैं कि शायद प्रभुपाल वेस्ट में आने से पहले बहुत परेशान रहते होंगे, लेकिन कुछ सफल उनको प्राप्त नहीं हुए, प्रभुपाल यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी इन फोटोग्राफ। प्रभुपाल वो सोचते हैं और कहते हैं नो, दो हजार तक जो अच्छे थे वो जो दिन थे वो मेरे एक्सेसिटी के दिन थे। तो भारी विषय से लग सकता है प्रभुपाल बहुत संघर्ष करते हैं, आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा उसको रैश करते हैं। गीते के अंदर पूरा ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान कभी भी वक्ता की मदद नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो क्वालिटी है संभाव है, भगवान कभी ना बहुत बार इसके ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि सुख और दुख में हमेशा संभाव रहना चाहिए। भगवगीता के बारे में जाने भगवान बोलते हैं ऐसा वक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि हर स्थिति में संभाव रहता है। समा शत्रु से मित्र हमेशा दुश्मन में और फ्रेंडशिप में दोनों में संभाव रहता है। सुख दुख, सुख दुख में हमेशा संभाव रहता है। दूसरे ध्यान में भगवान बताते हैं कि जो इस व्यक्ति के अंदर गुण है दुख सुख में संभाव रहने का, जो व्यक्ति योग्य है क्वालिफाइड है अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए, सामृत हमें स्वयं कर सके कि वो जन्म व्यक्ति के चक्र से बहुत साधारण को जीत सकते हैं। तो इस समय हो चुका है तो एक पॉइंट और बताना चाहूँ। श्री गोपाल जैसे अपने लेक्चर में बताते हैं कि भक्त के जीवन में बहुत ही समस्याएं आ सकती हैं, पर इसे एकमात्र सोल्यूशन क्या है, चैन हरे कृष्णा बी पेशेंट देन एवरीथिंग विल गो ऑलराइट। हरे कृष्णा हम नजर कीजिए और धैर्य बना के रखिए तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप के ठीक है। कुछ आपको बताना चाहिए कमेंट है कुछ